हेलो, दिस संदीप कुमार एंड वेलकम यू ऑल टू द ब्लॉकचेन शो। इस पॉडकास्ट में हम बिटकॉइन और ब्लॉकचेन के एक बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। एक ही पॉडकास्ट में दोनों टॉपिक्स को कवर करने का रीजन ये है कि दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड हैं, वो इस सेंस में कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन का ही एक एप्लीकेशन है। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, हम एक छोटी सी ऑडियो क्लिप सुन लेते हैं।
So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, then there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. That kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions, will also have an easier way to carry on their business.
इस ऑडियो क्लिप में जिस पर्सन को आप सुन रहे हैं उनका नाम है मिल्टन फ्रीडमैन, जो कि यूएसए के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। इनके इंटरव्यू का ये वीडियो बिटकॉइन आने से बहुत साल पहले का है, जिसमें ये बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को प्रेडिक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब मेन कंटेंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इसलिए इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस देखने को नहीं मिलता है। इसका ना तो किसी तरह का नोट है और ना ही कॉइन। इंडियन करेंसी, जिसे हम रुपए भी कहते हैं, इसका फिजिकल प्रेजेंस भी है और डिजिटल प्रेजेंस भी है, पर इंडियन करेंसी क्रिप्टो करेंसी कैटेगरी में नहीं आता है। आगे बढ़ने से पहले हम क्रिप्टो का मतलब समझ लेते हैं। क्रिप्टो वर्ड एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड क्रिप्टो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीक्रेट। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर एक मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू एक आसानी से पढ़े जाने वाले टेक्स्ट फाइल या डेटा को कॉम्प्लिकेटेड सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि डेटा की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। और करेंसी, जिसका मतलब होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी क्रिप्टो करेंसी मतलब सीक्रेट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। डिजिटल करेंसी होने के कारण आप इसे अपने मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट के थ्रू किसी दूसरे पर्सन को बहुत ही आसानी से सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये करेंसी उस करेंसी से बहुत अलग है जिसे आप नॉर्मली यूज करते आ रहे हैं। नॉर्मली जिस करेंसी को आप यूज़ करते हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के पास इस बात की फुल अथॉरिटी होती है कि जब भी आप इस करेंसी का मिसयूज करेंगे तो आपके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी करेंसी को डीमोनेटाइज भी कर सकती है, जैसा कि हमने 2016 में देखा था, जब 1000 और 500 के नोट को इलीगल टेंडर घोषित कर दिया गया था। सेंट्रल बैंक करेंसी को इशू तो करती है, इसके साथ ही साथ सेंट्रल बैंक एक मीडिएटर का भी रोल प्ले करती है उन दो पार्टीज के बीच जिनके बीच ट्रांजेक्शन का डिस्प्यूट होता है। सेंट्रल बैंक किसी भी संख्या में करेंसी प्रिंट कर सकती है, लेकिन टोटल जनरेट की गई करेंसी पे अगर लिमिट ना हो तो इससे एक प्रॉब्लम भी होती है, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, जैसा कि जिम्बाब्वे के साथ हुआ। वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन की बात करें तो ये पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड करेंसी है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सभी नोड के पास सेम परमिशन और सेम रिस्पांसिबिलिटी होती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड होने के कारण इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई मीडिएटर भी नहीं होता है। क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, इसलिए इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है कि कौन किसे कब और कितना बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकता है। जहां तक बात आती है टोटल बिटकॉइन सर्कुलेशन की, तो मैं बता दूं कि केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही इशू किए जा सकते हैं। बिटकॉइन की शुरुआत उस आइडिया से हुई थी जिसे सतोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन व्हाइट पेपर के नाम से पब्लिश किया था। इस बात का बहुत ही कम लोगों के पास कोई प्रूफ है कि सतोशी नाकामोटो एक इंडिविजुअल ह्यूमन है या फिर कोई ग्रुप। लेकिन जब आप इंटरनेट पे सतोशी नाकामोटो के बारे में सर्च करेंगे तो एक फोटो से आपका सामना जरूर होगा। बिटकॉइन व्हाइट पेपर में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी और इसके वर्किंग से हमें इंट्रोड्यूस कराया था। क्रिप्टो की दुनिया में अगर कोई नाम सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वह है सतोशी नाकामोटो। लेकिन सतोशी नाकामोटो ही वह इंसान है जिसके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं। बिटकॉइन की वर्किंग को समझने से पहले हम बैंकिंग सिस्टम के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं जिनके वजह से बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी को इन्वेंट करना पड़ा। बैंकिंग सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है हाई ट्रांजेक्शन फीस, फिर है अनलिमिटेड करेंसी को प्रिंट करना, सिक्योरिटी की कमी, बैंक पर निर्भरता और सेंट्रलाइजेशन। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम और आप अच्छे से अवेयर्ड हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, यानी बिटकॉइन के वर्किंग की। जब बात पैसों की हो तो लेजर का होना बहुत जरूरी है। लेजर यानी एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें पैसे के लेन देन की सभी जानकारी होती है। कब, किसने, किसको, कितने रुपए ट्रांसफर किए या रिसीव किए, ये सभी जानकारी लेजर में रखी जाती है। यूजली सेंट्रल बैंक हमें खुद के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड तो दिखाती है, लेकिन दूसरे के ट्रांजेक्शन को प्राइवेट ही रखती है। लेकिन बिटकॉइन के केस में सभी ट्रांजेक्शन यानी लेजर्स को पब्लिक ही रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो बिटकॉइन के नेटवर्क से जुड़ा है या नहीं, आसानी से किसी के ट्रांजेक्शन डिटेल को देख सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि तो फिर हमारी प्राइवेसी है क्या, तो मैं बता दूं कि इसके लिए भी बिटकॉइन में पूरा इंतजाम किया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। जैसे आप अपने रुपए को सेंड या रिसीव करने के लिए UPI वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरह बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन के लिए बिटकॉइन वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और मार्केट में कई तरह के बिटकॉइन वॉलेट अवेलेबल हैं। एक बिटकॉइन वॉलेट के लिए जो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की बेसिकली वॉलेट के पासवर्ड की तरह काम करता है और पब्लिक की वॉलेट के एड्रेस की तरह। प्राइवेट की को भूलने या चोरी होने का मतलब है बिटकॉइन वॉलेट की ओनरशिप पे खतरा आना। आपके वॉलेट में जितने भी बिटकॉइन है उन्हें आप हमेशा के लिए खो सकते हैं, और इस केस में गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। इसलिए आप अपने प्राइवेट की को जिस भी तरीके से सिक्योर रख सकते हैं सिक्योर रखें। प्राइवेट की का यूज बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को डिजिटली साइन करने के लिए भी किया जाता है। पब्लिक की को प्राइवेट की से क्रिएट किया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप प्राइवेट की को पब्लिक की से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ब्लॉकचेन को सिक्योर माना ही नहीं जाता। लेकिन ब्लॉकचेन की पॉपुलैरिटी इसलिए भी है क्योंकि ब्लॉकचेन एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है। प्राइवेट की और पब्लिक की बेसिकली दो लार्ज नंबर ही होते हैं, जिन्हें नॉर्मली हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सेम पर्सन के डिफरेंट वॉलेट एड्रेस है। एक ही बिटकॉइन वॉलेट हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग एड्रेस जनरेट करता है, जिससे बिटकॉइन आपके ही वॉलेट पर रिसीव होता है, लेकिन प्राइवेसी इंक्रीज हो जाती है। बिटकॉइन में अकाउंट क्रिएट करने के लिए किसी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बिटकॉइन आपके ट्रांजेक्शन को आपके फोन नंबर या किसी दूसरे पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन से लिंक नहीं करता है। जबकि वो ट्रांजेक्शन जो गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई करेंसी से रिलेटेड होता है, उसे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आपके फोन नंबर से लिंक कर दिया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट के लिए यह देखना आसान हो जाता है कि जिन दो लोगों के बीच ट्रांजेक्शन किया गया है उनकी लोकेशन क्या क्या है, जबकि ये बिटकॉइन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बिटकॉइन में किसी दूसरे सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम से कहीं ज्यादा प्राइवेसी है। बिटकॉइन नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन, एक कंप्यूटर और बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और फिर बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर खुद ही अपने पीयर से कनेक्ट होने में आपकी हेल्प करता है। किसी भी ब्लॉकचेन प्रोग्राम जैसे कि बिटकॉइन के तीन मेन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वॉलेट की तरह काम करना, माइनर की तरह काम करना या फुल ब्लॉकचेन डेटाबेस नोड की तरह काम करना। इंस्टॉलेशन के तुरंत बाद ही आप बिटकॉइन को सेंड या रिसीव कर सकते हैं, यही बिटकॉइन की सबसे खास बात है। जबकि बैंक में अकाउंट खुलवाने के बाद आपको कुछ टाइम का वेट करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बिटकॉइन को स्टोर, ट्रांसफर या रिसीव कर सकता है। इसलिए कुछ ऐसा सिस्टम होना जरूरी है जो ये चेक करे कि जो बिटकॉइन ट्रांसफर कर रहा है वो एक्चुअल में इस बिटकॉइन का रियल ओनर है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, बिटकॉइन एप्लीकेशन बहुत तरीके से काम करता है। उनमें से एक फंक्शन है माइनिंग का। माइनर कंप्यूटर बेसिकली बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने का काम करता है। आप जब भी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका हर ट्रांजेक्शन आपके प्राइवेट की से डिजिटली साइन कर दिया जाता है। नॉर्मली जब हम साइन करते हैं तो हमारा सिग्नेचर सभी डॉक्यूमेंट पे सेम होता है, चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट पे करें, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर केस में ऐसा नहीं होता है। एक डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। आपका डिजिटल सिग्नेचर भी एक लार्ज नंबर ही होता है। अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी चेंज किया जाए तो सिग्नेचर पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जिससे डॉक्यूमेंट टेम्परिंग को इजीली चेक किया जा सकता है। एक ट्रांजेक्शन साइन होने के बाद वैलिडेट होने के लिए अलग अलग नोड के मेमपूल में भेज दिया जाता है। वैलिडेशन के बाद माइनर्स इन ट्रांजेक्शन की एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिसे ब्लॉक्स भी कहते हैं। इस ब्लॉक के साथ जुड़ी होती है इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि ब्लॉक में कितने ट्रांजेक्शन्स है, ब्लॉक कब क्रिएट किया गया है और प्रीवियस ब्लॉक कौन सा है। ब्लॉक के जिस पार्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं हेडर पार्ट। अब इस हेडर पार्ट का हैश क्रिएट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। बिटकॉइन के केस में कंडीशन ये होता है कि करंट हैश टारगेट से लोअर वैल्यू का हैश कैलकुलेट करना होता है। हैश टारगेट डिसाइड किया जाता है बिटकॉइन के सॉफ्टवेयर द्वारा, ये देखने के बाद कि बिटकॉइन के नेटवर्क में माइनिंग के लिए कितना कंपटीशन है। ये कैलकुलेट किया गया हैश सेम ब्लॉक के प्रॉपर्टीज में ऐड नहीं किया जाता है, बल्कि ये ऐड किया जाएगा अगले ब्लॉक के हीटर पार्ट के उस सेक्शन में, जिसे कहते हैं प्रीवियस ब्लॉक, और फिर अगले ब्लॉक के हैश को ऐड किया जाएगा उसके अगले ब्लॉक में। इस तरीके से ब्लॉक की एक चेन क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्योंकि इस हैश को फाइंड करने में CPU को बहुत प्रोसेसिंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और हर CPU की एक स्पेसिफिक स्पीड होती है, इसलिए कैलकुलेट किए गए हैश को एक प्रूफ ऑफ वर्क कह सकते हैं। ब्लॉकचेन के फायदे के कारण बिटकॉइन के बाद बहुत से ब्लॉकचेन नेटवर्क को डेवलप किया गया, जैसे कि इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, जिसमें से इथेरियम एक पॉपुलर ब्लॉकचेन है क्योंकि यह डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये था ब्लॉकचेन और बिटकॉइन का ओवरव्यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है और ब्लॉकचेन को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो जिस भी एप्लीकेशन पे आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कमेंट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाते जाते मैं ये बता दूं कि इस शो के सभी एपिसोड्स हिंदी में होंगे, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं संदीप कुमार signing off.